नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ये हो गया देश व्रत हो गया देश व्रत देश व्रत सूक्ष्म सो यानी सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं सूक्ष्म और बादर जीवों के भेद दो होते हैं सूक्ष्म और बादर बादर यानी बड़े शरीरधारी और सूक्ष्म यानी अत्यंत छोटा शरीर जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते और बादर शरीर जो होते हैं वो भी इतने छोटे रहते हैं कि अपने आंखों से दिख नहीं सकते जैसे एक अली वगैरह है ये तो दिखाई देते हैं ये बादर कहलाते हैं बादर यानी बड़े और पानी में जो अपन छान करके जीवाणु को छोड़ते हैं पानी छान करके द्विइंद्रिय जीवों को छान करके जीवाणु को हम पुनः पानी में छोड़कर कपड़े के पानी को जीवाणुओं को वो कपड़े खोल करके देखो तो दिखते नहीं लेकिन है क्या नहीं जीवाणु उसमें संख्यात जीवाणु तो है ही तो आंखों से दिखाई नहीं देने वाले बादर जीव होते जो जो आंखों से दिखते हैं वही बादर होते हैं आंखों से ना दिखे वो बादर नहीं है ऐसा नहीं बादर जीव आंखों के विषय भी हैं और नहीं भी हैं किंतु सूक्ष्म जीव तो आंखों के विषय ही नहीं है जो कपड़े में रहने वाले जीव हैं जो हमको दिखते नहीं उससे भी ज्यादा सूक्ष्म उससे भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसे जीवों शरीरधारी जीवों के जो भेद हैं दो हैं सूक्ष्म और बादर अब औदारिक शरीर जो होता है औदारिक शरीर त्रिरंश्य प्राणियों को और मनुष्यों को त्रिरंश्य गति के त्रिरंशों को और मनुष्य गति के मनुष्यों को जो शरीर होता है उस शरीर को हम औदारिक शरीर कहेंगे हमारा शरीर कौन सा है औदारिक और ये पेड़ पौधे आदि एकेंद्रीय जीव कहलाते वनस्पति ये जो पेड़ पौधे हैं इनका शरीर कौन सा है इनका भी शरीर औदारिक औदारिक। जल यानी पानी वह भी एक इंद्रिय है, तो उसमें एक इंद्रिय जीव जल का एक जीव जन्म आकर के जन्म लिया है और पानी को ही अपना शरीर बना लिया है। पानी में रहने वाले जीव अलग है, वो जल का एक नहीं, वो द्वि इंद्रिय जिनको छान करके हम अलग कर देते हैं, उन जीवों का नाम द्विइंद्री जीव, द्विइंद्री जीव। पर पानी एक इंद्री जीव, पानी एक इंद्री जीव और पानी में रहने वाले तैरने वाले जीव द्विइंद्री। हम किनको छानते हैं? द्विइंद्री जीवों को छानकर अलग करते हैं। अच्छा, उसमें एक इंद्री भी है और द्विइंद्री भी है, दोनों की हिंसा होती है। कौन सी हिंसा बड़ी है? दो इंद्री जीवों की हिंसा बड़ी है कि एक इंद्री? दो इंद्री जीवों की हिंसा बड़ी मानी जाती है। इसलिए श्रावक पानी को छानकर उपयोग में लाता है। त्रस्कायिक जीवों की रक्षा ही श्रावक धर्म है, स्थावर कायिक जीवों की रक्षा तो वो कर नहीं सकता। स्थावर यानी एक इंद्री और त्रस यानी द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, इन जीवों को त्रस बोलते हैं। त्रस का त्रस क्यों कहा? क्योंकि उनमें चलने फिरने की शक्ति है। द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, इन जीवों को चलने फिरने की शक्ति है, इसलिए त्रस कहा। और एकेंद्री जीवों को स्थावर क्यों कहा? उनमें चलने फिरने की शक्ति नहीं है, स्वयं शक्ति नहीं है, निमित्त से तो चलेंगे वो। हवा चल गई तो पानी दौड़ सकता है, हवा दबाव से चलता फिरता रहता है, अपने आप नहीं जाता। वो भी इस सृष्टि में कहीं किसी क्षेत्र में दबाव आ गया तो हवा इधर खिसक गई, तो हवा चलती हुई दिखाई देती अपने को, लेकिन स्वयं हवा भी नहीं चलती। अग्नि चलती हुई दिखाई देती है, ऊपर की ओर दौड़ती है, तो अग्नि में भी स्वयं चलने की शक्ति नहीं है। इसलिए इन जीवों को स्थावर कहा। पृथ्वी जो आप बैठे हैं, ये पत्थर वगैरह, इनको भी स्वयं चलने फिरने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये एक इंद्री है ना, जीव है ना। तो इन जीवों को चलने फिरने की शक्ति न होने से स्थावर कहा और द्विइंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहा। तो ये ध्यान में रखना है। औदारिक शरीर यानी किसका शरीर? कितने गतियों का जीवों का शरीर? त्रिरंच और मनुष्य। और कौन बच गए अब? नारकी जीव और देवगति। देवगति के और नारकी जीवों के शरीर को अपन कौन सा शरीर बोलते हैं? वैक्रीक शरीर। वैक्रीक शरीर क्यों बोला? हाँ, उनमें विक्रिया करने की शक्ति है। मूल शरीर को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, और मूल शरीर से दूसरा शरीर भी निर्मित कर सकते हैं विक्रिया से। देवलोग एक शरीर को दो भी बना सकते हैं और उस शरीर को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। नारकी जीव अपने शरीर को छोटा बड़ा तो बना सकते हैं, लेकिन एक का दो नहीं बना सकते, ये विशेषता होती है नारकी जीवों में और देवों में। पृथक विक्रिया नहीं होती उनकी, एक शरीर को छोड़कर दूसरा, पृथक दूसरा, ऐसे दो शरीर नहीं बना सकते नारकी जीव, तो इसलिए इनको वैक्रीक शरीर कहा। औदारिक शरीर को औदारिक शरीर क्यों कहा? वैक्रीक शरीर को तो वैक्रीक कह दिया, क्योंकि विक्रिया होती है इसलिए वैक्रीक। औदारिक क्यों कहा? हाँ, ये सप्त धातुओं से सहित होता है, किंतु वैक्रीक शरीर सप्त धातुओं से रहित होता है। ये सप्त धातुओं से सहित होता है और ये बहुत उदार है। उदार यानी इसको जला सकते हैं, इसको काट दे तो दो भाग हो सकते हैं, लेकिन नारकी और देवों के शरीर को न जला सकते न काट सकते हैं, वो उदार नहीं है, उनके परमाणु ठोस हैं और वही औदारिक शरीर के परमाणु उदार हैं, ठोस नहीं। अब क्या आया, गर्भज। गर्भज, गर्भज यानी क्या, गर्भ यानी गर्भ, ये तो मालूम है। ज यानी उत्पन्न होना, गर्भज गर्भ से उत्पन्न होना, गर्भज। ज यानी उत्पन्न होना, ग यानी गर्भ। ये गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव तीन प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान में रखना है, सुन रहे ना। गर्भज जीव कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। गर्भ से उत्पन्न होने वाले कैसे तीन प्रकार के होते हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले ये भी गर्भज कहते हैं, क्योंकि अंडा गर्भ से ही निकलता है। और दो भेद और हैं, जरा जरायुज, अंडज और पोत। पोतज मत बोलो, पोतजन। जरा दो को तो ज जोड़ देना, जरायुज अंडज और पोत। जरा इसमें तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, देखो कौन सा, हाँ जरायुजांडज पोतानाम, क्या पोतजानाम ऐसा कहा है क्या, ज लगाया है क्या, नहीं। ज क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वे पोत पोत जन्म वाले जो जीव हैं वो सीधे ही गर्भ से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद उनके ऊपर कवच वगैरह कुछ भी नहीं रहता। कैसे, कौन कौन से जीव ऐसे, हिरण है, हिरण पोत जन्म वाले, जरायुज भी नहीं और वो अंडज भी नहीं, हिरण। और शेर वगैरह है, जन्मते हैं तो सीधा आते हैं। और जरायुज जन्म वाले जो जीव होते हैं वो मनुष्य वगैरह, मनुष्य जब जन्मता है तो उनके लिए कवच रहता है, उस कवच को अलग कर दिया जाता है, ये पोत जन्म वाला नहीं है मनुष्य, मनुष्य जरायुज जन्म वाला है। तो ऐसे जिन जिन जीवों के शरीर पर जन्म लेने के बाद कवच रहता है वे जरायुज जन्म वाले हैं, और जिनको कवच नहीं रहता वे पोत जन्म वाले हैं। और जो अंडे सहित जन्म लेते हैं, गर्भ से अंडा बाहर आता है और फिर अंडे से निकलते हैं, इनको अंडज बोलते हैं। किंतु इनमें जन्म की अपेक्षा से फर्क देखो क्या है, जरायुज वाले जन्म लेते हैं तो तुरंत कवच को अलग करके बाहर आते हैं, और पोत जन्म वाले तो कवच रहता ही नहीं, बाहर आते ही वो चलने फिरने लगते हैं। और ये कवच वाले जब तक कवच अलग नहीं होता तब तक हिलते डुलते नहीं, वो पिशवी में रहते हैं। और अंडज, हाँ इनको लेट लगता है बहुत समय बाद, यानी उसको उष्णता और देनी पड़ती है, उष्णता दे करके और उसको विकसित किया जाता है। जब जीव विकसित होता है तो वो अंडे का जो बाहर का परता है वो पतला 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 होता जाता है, जब जीव विकसित होगा तो वह फोड़ देता है, फूट जाता है किसी एक जगह से और वो बाहर आ जाता है, जैसे पक्षी वगैरह। पक्षी जितने भी हैं सब अंडज होते हैं, पक्षी में से एक भी कोई जरायुज दिखता नहीं, क्या दिखता है, किसी पक्षी को भी देख लो अंडे से ही बाहर आते हैं कि नहीं, क्या गर्भ से सीधा बाहर आने वाले पक्षी भी हैं? नहीं है। छिपकली, हाँ छिपकली अंडज, नहीं पक्षियों में कोई गर्भ से सीधा बाहर आने वाले हैं क्या? पक्षियों में छिपकली पक्षी नहीं है। हाँ छिपकली अंडज है, अंडज मतलब ये पृथ्वी में घूमता है ना, थलचर है ये। नवचरों में पक्षी सभी नवचर कहलाते हैं, और भूमि पर चलने वाले जीव को थलचर कहा जाता है, थलचर, और जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है। जल में रहने वाले जीव भी तीनों प्रकार के होते हैं, अंडज भी होते हैं जल में, मछली वगैरह अंडे भी दे सकते हैं, और ये जरायुज भी होते हैं, और पोत जन्म वाले भी होते हैं, तीनों प्रकार के, तीनों प्रकार के जीव हैं। अब थलचर भी तीनों प्रकार के होते हैं, जरायुज अंडज पोतज। नवचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पक्षियों में कितना भेद करना चाहिए? अंडज एक ही है, लेकिन शास्त्रों में तो मिलता है ये भी तीनों प्रकार के हैं। हो सकता है जो जरायुज हैं और पोत जन्म वाले हैं वे सारे के सारे लुप्त हो गए हों, कुछ जातियां नष्ट हो गई हों, या इस देश में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां नहीं हो तो कहीं ना कहीं अवश्य वो रहेंगे ही, शास्त्रों में तो आया है। नवचर जीव भी तीन प्रकार के होते हैं, जलचर थलचर नहीं जरायुज अंडज और पोत। आगे बादर, बादर का अर्थ समझ में आया? ती यानी तिर्यंच जीव, तिर्यंच गति में जन्म लेने वाले जीवों को तिर्यंच कहा? तिर्यंच पशु। फिर एक ही इंद्रिय, एक इंद्रिय, एक ही इंद्रिय जिसको हो एक ही इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, फिर दो, तीन इंद्रिय, फिर चतुर इंद्रिय, फिर पम यानी पंच इंद्रिय, और इसमें दो भेद हो जाते हैं, संगी असंगी, ऊपर आया है असौज्ञी और सौज्ञी। गुण यानी गुण स्थान, हाँ इसका विषय रह गया है, चौथे तक हो चुका है। पांचवा गुण स्थान देश विरत जीवों का है, देश विरत जीव यानी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव कितने गतियों के हो सकते हैं विचार करेंगे? दो गति में हो सकते हैं, कौन कौन सी गति? मनुष्य गति और तिरंच गति। नरक गति और देव गति में क्यों नहीं होते? देश संयम धारण नहीं कर सकते, वो एक देश संयम भी धारण नहीं कर सकते और सकल संयम भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए दो ही गति में संयत जीव हैं। छठा गुणस्थान किसका है? मुनियों का। उस गुणस्थान का नाम क्या है? जरा गुणस्थान का नाम लिखा है ना उस दिन, उसको निकाल के रखो, संक्षिप्त में हम उनका स्वरूप समझाएंगे। बहुत अच्छा है गुणस्थान का वर्णन। छठा गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत। क्या अर्थ होता है प्रमत्त का? प्रमत्त यानी प्रमाद, आलस अथवा कषाय। प्रमादी किसको कहा जाता है? कषायवान जीव को प्रमादी कहा जाता है। कषाय जितने प्रकार के हैं वो सभी प्रमाद रूप ही हैं। अनंत अनुबंधी कषाय महाप्रमाद है, अप्रत्याख्यानावरणी प्रमाद है, प्रत्याख्यानावरणी प्रमाद है। ये कषाय जहां उदय में रहेंगे वहां पर तो संज्वलन कषाय उदय में होती ही है। संज्वलन कषाय अकेली जब बच जाती है तो उसको भी प्रमाद के कोटि में लेते हैं। कषाय ने कषाय क्रोध मान माया और लोभ, उसके अलग अलग क्वालिटियां बनती हैं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और अकषाय। अकषाय प्रमाद, ये प्रमाद क्या चीज है? कषाय की संवेदना करना ही प्रमाद है। कैसी संवेदना? तीव्र संवेदन करना। छठे गुण स्थान तक कषाय तीव्र फल देता है, इसलिए छठे गुण स्थान का नाम प्रमत्त विरत गुण स्थान पड़ा। प्रमत्त विरत, प्रमाद का सद्भाव कहां तक है? छठे तक, और सप्तम गुण स्थान से लेकर ऊपर प्रमाद नहीं है। अप्रमत्त विरत, देखो अप्रमत्त विरत सातवें गुण स्थान का नाम, वहां पर कषाय तीव्र नहीं होती। किस गुण स्थान में? सातवें गुण स्थान में। और छठे गुण स्थान में कषाय तीव्र होती है, उस तीव्रता का नाम है प्रमाद और मंदता का नाम है अप्रमाद। ये छठे गुण स्थान का स्वरूप, सातवें गुण स्थान का स्वरूप भी वही है। अब सातवें गुण स्थान के बाद आठवां गुण स्थान आता है, उसका नाम क्या? अपूर्वकरण गुण स्थान। अपूर्वकरण अपूर्वकरण गुण स्थान किसको कहते हैं? अपूर्व अपूर्व यानी पूर्व में कभी ऐसे परिणाम नहीं हुए थे। अपूर्व अपूर्व परिणाम, अपूर्व करण, करण यानी परिणाम, अपूर्व यानी पूर्व में ऐसे परिणाम कभी हुए नहीं थे। ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम जिस गुणस्थान में होते हैं उस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण गुणस्थान। इस गुणस्थान में प्रमाद नहीं रहता, कषाय मंद रहती है, लेशा जो है शुक्ल रहती है, यानी परशुद्ध परिणाम रहने के कारण इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण गुणस्थान है। नवा गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में रहने वाला जीव अपूर्वकरण गुणस्थान से ज्यादा विशुद्ध होता है, इसलिए अनिवृत्तिकरण। करण यानी परिणाम, अनिवृत्ति यानी नीचे से भी ऊपर के परिणाम हाँ ज्यादा होते हैं। अनिवृत्ति यानी अब इस गुण स्थान से वह पतन को प्राप्त नहीं होता, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है, इसलिए अनिवृत्तिकरण इसका नाम है। दसवें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। सांप्राय यानी कषाय, सांप्राय यानी कषाय। कषाय जिस गुणस्थान में अति सूक्ष्म हो उस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। अत्यंत सूक्ष्म हो उस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। अगला गुणस्थान उपशांत मोह। उपशांत शांत हो गया है, बिल्कुल शांत। उपशांत बिल्कुल कषाय बिल्कुल शांत हो गया, अब सूक्ष्म भी नहीं है और बाधर भी नहीं, बिल्कुल शांत। शांत यानी उपशमन को प्राप्त हुआ, अब उदय में नहीं है। कषाय जब उदय में आती है तब फल देती है, पर जब उदय में नहीं रहती तब फल नहीं देती। तो ग्यारहवें गुणस्थान में जो कषाय होती है उसका नाम उपशांत, वो कषाय बिल्कुल दब चुकी होती है। जैसे एक पात्र में पानी भर दिया, पानी पानी भरा और भरने के उपरांत उसमें मिट्टी घोल दिया, काली मिट्टी लाल मिट्टी कोई मिट्टी घोल दिया, पानी कैसा है अब गंदा हो गया। अब गंदा हो गया तो गंदा क्यों दिख रहा है? मिट्टी उसमें ऊपर नीचे सब जगह है, इसलिए गंदा दिख रहा है। अब ऐसा गंदा ही रहेगा क्या? नहीं, सांप भी हो सकता है। तो सांप कब होगा? वो मिट्टी के कण सारे आ करके नीचे तलभाग में बैठ गए तो पानी साफ है, उसको पी सकते हैं। और ऊपर से धीरे से उठा लो, हिलाओ नहीं और निकाल लो पानी, साफ पानी मिलेगा। तो ग्यारहवा गुणस्थान किस टाइप का है? पूरा मिट्टी के कण, कर्म के कण नीचे बैठ गए और पानी ये आत्मा के समान है। वहां पर जहां पर कषाय रूपी मिट्टी के कण बिल्कुल उपशमित हैं, बैठ गए हैं, ऐसे परिणाम ग्यारहवें गुणस्थान में होते हैं। इसको उपशांत कषाय कहते हैं। बारहवा गुणस्थान क्षीण मोह, क्षीण मोह, क्षीण यानी नष्ट, अभाव, नष्ट अभाव या क्षय ये भी कह सकते हैं। क्षय कहो, अभाव कहो, नष्ट कहो, एक ही बात है। कषाय जहां पर पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं, यानी अभी जो उदाहरण दिया उस उदाहरण के माध्यम से ये समझ सकते हैं अपन, ग्यारहवें गुणस्थान में और बारहवें गुणस्थान में क्या अंतर है। ग्यारहवें गुणस्थान में तो वो मिट्टी के कण पूरे कषाय कण नीचे बैठे हैं, और बारहवें गुणस्थान में क्या हो गया है? उस जल को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, और मिट्टी तो नीचे बैठी थी उसको फेंक दिया, अब दूसरे बर्तन में निकाल दिया उसको। अब उसमें मिट्टी के कण है क्या? नहीं है। इसी को क्षय बोलते हैं। आत्मा के भीतर कषाय के कण बिल्कुल ही ना हो तो उसको क्षीण कषाय कहते हैं। क्षीण कषाय गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त ही होता है। देखो, ज्यादा से ज्यादा समय किस गुणस्थान का है? सबसे ज्यादा मिथ्यात्व गुणस्थान में है, यानी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में बहुत समय तक रह सकता है, बहुत समय तक रह सकता है। इतने समय तक किसी भी गुणस्थान में नहीं रहता। चौथे गुणस्थान में 33 सागर से भी ज्यादा रह सकता है। जैसे एक मनुष्य है, उसने चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन था, मुनि बन गए तब भी सम्यक दर्शन है, और वो चतुर्थ काल के मुनि हैं, पूर्व कोटि आयु होती है, पूर्व कोटि आयु व्यतीत होने के बाद भी सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं किया और अंत में समाधि मरण किया, तो सर्वार सिद्धि चले गए। सर्वार सिद्धि में 33 सागरोपम की आयु है, वह सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा। सर्वार सिद्धि का ऐसा नियम है कि वहां जन्म लेने वाले जीव का सम्यक दर्शन बिल्कुल विनाश नहीं होता, तो वहां पर 33 सागरोपम तक सम्यक दृष्टि रहा, फिर नीचे आया। किस गति में आएगा? मनुष्य गति में ही आएगा। सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य ही बनता है, और यदि मिथ्या दृष्टि होता है क्या बनता है? मनुष्य भी बन सकता है और त्रिरंच भी बन सकता है, परंतु इसका नियम है। कहां किस कौन से स्वर्ग तक का जीव त्रिरंच बनता है और नहीं बनता, इसका नियम है। क्या नियम है? पहले स्वर्ग से लेकर बारहवें स्वर्ग तक का जीव वहां से मरण कर यहाँ आकर त्रिरंच भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। ध्यान में रखेंगे, ये एक अच्छा नियम है। कौन से स्वर्ग तक का जीव आकर यहाँ त्रिरंच बन सकता है? बारहवें स्वर्ग से आकर यहाँ त्रिरंच बन सकता है। तेरहवें में आने वाला, तेरहवें से आने वाला सम्यक दृष्टि रहता, ऐसा नहीं। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव कहां तक पाए जाते हैं इसको भी ध्यान रखो, ये भी एक नियम है। भवनत्रिक से लेकर और स्वर्ग में पहले स्वर्ग से लेकर नवे ग्रहिक तक जीव सम्यक दृष्टि भी रहते हैं और मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। ध्यान में रखेंगे, हाँ, कहां से कहां तक? हाँ, ये सभी नक्शा के माध्यम से दिखाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के पास वो है ही नहीं साधन। बड़ा नक्शा तीन लोग का सब दिखा सकते थे, कहाँ स्वर्ग कहाँ
में है, लेकिन में है।
हाँ, कहीं हो तो एक बुलवा लो, एक बार परिचय बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कल्पना में नहीं आएगी। अपन बताते जा रहे हैं, महाराज क्या बता रहे हैं, ग्रह कहने का कहाँ नीचे है क्या ऊपर है, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो एक नक्शा, एक बार नक्शा बता देंगे। देखो, ये कौन सा लोक है? मध्य लोक है। और रात को हम जो देखते हैं तारे, नक्षत्र, चंद्र, दिन में दिखता है सूर्य, ये किस लोक में है? मध्य लोक में है ना। भाई तो ऊर्ध्व लोक मत कहो, जो ऊपर है तो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक में ही है, ये भी मध्य लोक है। मध्य लोक की सीमा कहाँ तक है? मध्य लोक की सीमा कहाँ तक है? सुमेरु पर्वत की चोटी तक। सुमेरु पर्वत जहां खत्म होता है वहां से ऊर्ध्व लोक प्रारंभ होता है। यानी यूं कहना चाहिए, सुमेरु पर्वत जहां पर खत्म होता है वहीं से स्वर्ग प्रारंभ होता है। स्वर्ग का प्रथम विमान जो है वह सुमेरु पर्वत के चोटी से, शिखर के अंतिम भाग से शुरू हुआ। कितना अंतर है सुमेरु पर्वत और एक बाल? आप निश्चित गए होंगे, देख के आए होंगे, इसलिए जल्दी उत्तर दिया। एक बाल बराबर का अंतर है, एक बाल बराबर का, बिल्कुल उतना ही अंतर है। वो ठीक देख करके आए हैं। और हम तो गए नहीं थे वहां, लेकिन भगवान ने बताया इसलिए हम बता रहे हैं। एक बाल बराबर का अंतर है और वहां से स्वर्ग प्रारंभ, ऊर्ध्व लोक कहलाया। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग होते हैं, यानी सुमेरु पर्वत के बाद ही स्वर्गों की रचना है। अब प्रश्न उठता है कि ये सुमेरु पर्वत कहाँ है महाराज? किस देश में? अमेरिका में है कि भारत में है कि कहाँ है? तो ये अमेरिका भी में नहीं है और भारत में भी नहीं। जैन धर्म के अनुसार जो भूगोल की संरचना है वो एकदम पृथक है विज्ञान से। विज्ञान जैन धर्म के भूगोल को खोजने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अभी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। उसका 1% भी खोज नहीं कर पाया है। जितना उसमें बताया है उसका खोज पूरी तरह से हो भी नहीं सकता। कुछ खोजा है और बहुत कुछ शेष है। तो जो खोजा है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, अभी जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी चंद्रमा जा रहे हैं, मंगल ग्रह जा रहे हैं, अब गुरु ग्रह जाएंगे, जाना जारी है इनका। विज्ञान पूर्ण नहीं है, अधूरा है, अभी तो चल रहा है वो। और धर्म का जो भूगोल है वो चल चुका है, मंजिल पर पहुंच चुका है, सब खोज कर चुका है। इसलिए धर्म का भूगोल और विज्ञान का भूगोल, इन दोनों में परस्पर हम तालमेल बिठाते हैं तो कहीं कहीं बैठता भी है और नहीं भी बैठता है। विज्ञान एक अनुमानिक विषय को लेकर के चलता है, एक कल्पना करता है, उस कल्पना को फिर बाद में वो साकार भी करता है। साकार करते समय वो जैसा कल्पना की थी वो ठीक निकला, निकला नहीं निकला तो वो अनुमानिक विषय अनुमानित ही रहता है, ऐसा चलता है विज्ञान का। तो धर्म में जो कुछ भी भूमि संबंधी, आकाश संबंधी, स्वर्ग संबंधी, नरक संबंधी जो कुछ भी विषय बताया गया है, मध्यलोक संबंधी, असंख्यात द्वीप समुद्र संबंधी, ये कुछ जो कुछ भी बताया है वो असत्य नहीं है, ये पहला समझ लेना चाहिए। नहीं तो कोई कोई ऐसा विचार रखते हैं, विज्ञान तो ये कहता है और धर्म तो ये कहता है, धर्म का झूठा है सब कुछ कहना, क्योंकि जो विज्ञान में कहा है वो धर्म में, जो कहा है वो विज्ञान में नहीं मिलता है, तो धर्म झूठा और विज्ञान सही, ऐसा कह सकते हैं क्या?
नहीं।
केवल ज्ञानियों ने विश्व को देखा है, विश्व अनंत है, अनंत विश्व को देखने की क्षमता केवल ज्ञानियों को ही होती है, और उनका कैसे झूठ हो सकता है? विज्ञानियों के पास, किसी के पास भी केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। अनंत विश्व को देखने की क्षमता है क्या? नहीं है। ये खोज करते करते जितना वो देखते हैं उतना कहते हैं, जितना देखते हैं उतना कहते हैं, और जिसको देखना है वो अनुमानिक विषय को भी बताते हैं, चंद्रमा यहां से इतनी दूरी पर है या चंद्रमा ऐसी वैसी है, पहले एक सामान्य कल्पना होती है और फिर जब खोज शुरू होती है तो थोड़ा थोड़ा खोजते खोजते आपके सामने विषय रखते जाते हैं, इसका नाम विज्ञान है। धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म में चंद्र और सूर्य नक्षत्र इन सब के बारे में जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया है, और जो कह दिया है उसको खोजना शेष है विज्ञान को, और वो खोजते जाएंगे तो धर्म में जैसा कहा है वैसा ही मिलेगा, ये निश्चित बात है। चंद्रमा पर धर्म कहता है, चंद्रमा के ऊपर देव लोग रहते हैं, कौन से देव? ज्योतिष देव। ये चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह आदि में रहने वाले कौन से देव? ज्योतिषी देव। ये ज्योतिषी देव वहां हैं, ये किस में आया है? विज्ञान में आया है कि धर्म में आया है? धर्म में आया है। परंतु देव मनुष्यों को दिख सकते हैं क्या? नहीं दिख सकते। अगर अपने शरीर को दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं, स्थूल बना करके दिखा सकते हैं। देवों का शरीर वैसे वैकरिक होने से सूक्ष्म ही होता है, परंतु स्थूल बना सके, बना करके दिखा सके तो दिखा भी सकते हैं वो। तो वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर पहुंचे क्या नहीं पहुंचे? सभी मानते हैं कि पहुंचे हैं, कथित रूप से पहुंचे हैं, और कथित रूप से क्या किए हैं फिर? कहीं और गए हैं, यानी देखो चंद्रमा पर पहुंचे हैं ये तो कह रहे हैं, लेकिन वह रॉकेट चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है, नहीं है हमारा निषेध नहीं है, पहुंच सकता है, लेकिन उसके पास उतनी क्षमता भी चाहिए, क्षमता भी चाहिए, क्योंकि मध्यलोक में है, पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य चंद्रमा से भी ऊपर निकल चुका है, चौथे काल में चंद्रमा से भी आगे जाते थे, कहां जाते थे? हाँ, सुमेरु पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय विराजमान है उनके दर्शन के लिए जाते थे। आपने अंजन चोरी की कथा पढ़ी है पुराणों में? हाँ, अंजन चोर सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों का दर्शन करके आया है। चोर बन करके गया और मुनि बन करके लौटा, मुनि बन करके लौटा भी नहीं, मुनि बन करके वहीं विराजमान हो गए वहीं त्याग तपस्या की और सुमेरु पर्वत से उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अंजन चोर मोक्ष गया है। चोरी पाप से चोर कैसे मोक्ष गया आप पूछ सकते हैं। चोर मोक्ष नहीं जाता। चोर अगर चोरी छोड़ देता है तो मोक्ष जा सकता है कि नहीं? अंजन चोर मोक्ष गया, अंजन चोर मोक्ष। अरे चोर भी मोक्ष जाते हैं क्या? मध्य लोक में सुमेरु पर्वत है। ये धर्म का विषय है। अभी विज्ञान में ये विषय आया ही नहीं। जब विज्ञान सुमेरु पर्वत पहुंचेगा तब सुमेरु पर्वत की बात करेगा। जब विदेह क्षेत्र जाएगा विदेह क्षेत्र की बात करेगा। विजयार्थ पर्वत जाएगा विजयार्थ पर्वत की बात करेगा। लेकिन अभी गया नहीं। असल चंद्रमा में, असली चंद्रमा में पहुंचेगा, असली चंद्रमा की बात करेगा। लेकिन जो वो खो चुका है और जहां पहुंच चुका है वहां पर मिट्टी पत्थर मिल गया है। मिट्टी भी लाए हैं और पत्थर भी लाए हैं। चंद्रमा पर ऐसी मिट्टी पत्थर है ही नहीं। महाराज फिर क्या है वहां? वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, पाषाण है, केवल पाषाण है, मिट्टी नहीं है। कैसा पाषाण है? चमकने वाला, जिस पाषाण से किरणें निकलती हैं। शास्त्रों में बताया है चंद्रमा से कितनी हजार किरणें, हजारों की संख्या में किरणें निकलती हैं। कितनी हजार किरण चंद्रमा से निकलती है। वो किरण स्वयं उसकी है। विज्ञान क्या बताता है? सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ी, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन हो करके भूमि पर आया, ऐसा कर कहता है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का वह जो दिखाई देता है पाषाण, वो स्वयं चमकदार है और उसकी किरणें शीतल हैं। शीतल बिल्कुल ठंडी किरणें हैं। चंद्रमा को देखो आंखों से रात को, पूर्णिमा के चंद्र को, आपको शांति मिलती है क्या? आंखों में तकलीफ होती है? शांति मिलती है। अगर सूर्य की किरणें उस चंद्रमा को टकरा करके अपने आंखों के ऊपर आ रही हैं तो भी आंखें जलन करना ही चाहिए। कैसे? कैसे तो ये देख लो आप। एक दर्पण को पकड़ो और सूर्य की तरफ करो और उस सूर्य के किरणें दर्पण में आ जाए, दर्पण की किरणें आंखों पर आ जाए, सहन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उष्णता रिफ्लेक्ट हो करके आने के बावजूद भी उष्णता उसमें होती ही है। विज्ञान का यह अनुमान है कि चंद्रमा की, सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ी और चंद्रमा की किरणें भूमि पर आई, फिर शांति क्यों मिल रही है? इसका कोई उत्तर नहीं है। चंद्रमा की किरणों से शांति मिलती है, क्यों मिलती है इसका कोई उत्तर नहीं। वो जो प्रकाश है वो सूर्य के किरणों से रिफ्लेक्ट होकर के यहां तक आ रहा है, इस प्रकार कहता है। लेकिन ये सभी बातें विज्ञान को बहुत अधूरा है। ये अभी खोजना चाहिए। खोज जब पूर्ण होगा तब सब कुछ बताएगा। चंद्रमा पर विज्ञानी गए हैं ऐसा ये मानना धर्म के अनुसार, तो यानी धर्म के अंदर जो चंद्रमा आदि का वर्णन किया उसके आधार से तो देखा जाए, उसकी दूरी के संबंध में देखा जाए, तो कोई विज्ञानी अभी तक चंद्रमा पर पहुंचे नहीं है। अमेरिका आदि में जो विज्ञानी चंद्रमा पर पहुंच गए वो भी विज्ञानी हैं और भी लोग विज्ञानी हैं। वो चंद्रमा पर पहुंचकर नीचे आने के बाद जब चर्चा कर चुके तो परस्पर में चर्चा करने के बाद शेष विज्ञानी कहने लगे तुम चंद्रमा पर हो नहीं आए, वो कोई दूसरा स्थान था जहां पर उतर करके तुम आए हो, वो चंद्रमा नहीं है। ऐसा भी वाद है। विज्ञानियों में दो प्रकार का वाद है। और ये जहाँ उतरे हैं वो चंद्रमा समझ करके आए हैं, लेकिन वो चंद्रमा नहीं है, क्योंकि ये विज्ञानी लोग भी कह रहे हैं और धर्म के शास्त्र भी बोल रहे हैं कि वो जो स्थान है वहाँ की मिट्टी पत्थर लाए हैं वो उसमें कोई भी चंद्रमा के लक्षण दिखाई नहीं देते। इस आधार से चंद्रमा पर नहीं गए हैं ये अपन कह सकते हैं। अच्छा, दूरी की अपेक्षा से भी देखा जाता है चंद्रमा की दूरी यहाँ से कितना है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। उतनी दूर विज्ञान अभी पहुंच नहीं पाया है, तो चंद्रमा पर नहीं गया है, और जहां गया है उसकी भी दूरी है, तो उसकी दूरी में और शास्त्र में कहा हुआ चंद्रमा की दूरी में फर्क आ रहा है, तो फिर चंद्रमा पर कैसे उतर सकते हैं? उतरे जरूर हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जहां उतरे हैं वो चंद्रमा नहीं है ये सिद्ध होता है। तो हम ये बता रहे थे, हाँ, स्वर्ग गुण स्थान का। स्वर्ग सुमेरु पर्वत के बाद है, उर्दू लोक में पहले 16 स्वर्ग हैं, इसके बाद 9 ग्रह एक विमान है। कैसे स्वर्ग हैं? एक के ऊपर एक, ऐसे 16, उसके उपरांत 9 ग्रह एक, एक के बाद एक, एक के बाद 9 ग्रह एक, उसके बाद 9 अनुदिश विमान है, 9-9 है ये संख्या में, उसके बाद फिर 5 अनुत्तर विमान है। कितने स्टेप हो गए? स्वर्ग, ग्रहवेग, अनुदिश, अनुत्तर विमान, कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेपों में ये ऊर्ध्वलोक बटा हुआ है, उसके उपरांत सिद्धशिला है। सिद्धशिला जहां पर सिद्धों का निवास स्थान आप समझते हैं, वो सिद्धशिला सबसे ऊपर है, लोक के अग्रभाग पर है। सिद्ध भगवान उस सिद्ध शिला के ऊपर बैठे नहीं रह सकते, हाँ, पालते मानकर ऐसे बैठे हों सिद्ध शिला पर, ऐसे सिद्ध भगवान नहीं है। सिद्ध शिला तो यूं नीचे है और यहां पर वात वलय है, यहां से लोक समाप्त होता है, इसके बाद अलोक आकाश है, वहां पर कोई भी जीव नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं है, एक आकाश द्रव्य के अलावा अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, ऐसे 3 वात वलय हैं, ये सिद्धशिला है। तो सिद्धशिला यहाँ आता है और यहाँ सिद्ध परमेष्ठी रहते, अंतिम वात वलय के सीमा में सिद्ध भगवान आते हैं, और सिद्धशिला उसके नीचे है। सिद्धशिला का स्पर्श नहीं है सिद्धों का, ये कहने में आता है कि सिद्ध शिला पर रहते हैं, ठीक है सिद्ध शिला पर ही रहते हैं, लेकिन सिद्ध शिला यहाँ नीचे है और सिद्ध शिला के ऊपर जो अंतिम वात वलय है वहां रहते हैं। तो सारे सिद्ध भगवान जो अनादिकाल से अब तक वो हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, वही हैं, अब भी वही जाने वाले हैं, एक न एक दिन जाने वाले ही हैं। सम्यक दृष्टि बने हैं तो टिकट कट गया है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में जाने वाले ही हैं। सम्यक दर्शन का टिकट मजबूत रखो और इसको क्षायिक रूप में ढाल देना। अभी तो उपशम सम्यक तो है, उपशम सम्यक तो प्राप्त होकर के क्षायोपशम के रूप में है, उपशम सम्यक तो का काल अंतर्मुहूर्त, क्षौपशम सम्यक तो का काल जीवन भर भी रह सकता है और नाश करना चाहो तो नाश भी हो सकता है। तो क्षायोपशम सम्यक तो आपके पास सुरक्षित है, तो टिकट तो कटा है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाओ या सम्यक से च्युत हो जाओ, पहले गुणस्थान में आ जाओ तो भी टिकट फालतू नहीं जाएगा, वो चलेगा, एक न एक दिन वह टिकट चलेगा। प्राचीन सिक्का फालतू नहीं होते क्योंकि वो सोने के होते हैं, 100 टंच सोना, और किसी का भी हो, वो लोहे का भी क्यों ना हो, उसकी कीमत होती है कि नहीं? प्राचीन हो और लोहे का हो या स्टील का हो, कीमत होती है कि नहीं? तो ऐसा ही, एक बार आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया टिकट कट गया, अर्धपुद्गल परावर्तन रह गया, अब ये सम्यक दर्शन रूपी सिक्का खो गया, और खोने के बाद ये तो प्राचीन बनता है खोने के बाद ये तो प्राचीन बनता है। आप अर्धपुद्गल परावर्तन तक खो करके पुनः प्राप्त कर लिया तो आपका सिक्का पुनः मिल गया, उस समय ज्यादा कीमत बढ़ जाती है हाँ, और वो काम में आएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन की बताया, सक्षय अनंत दो प्रकार का होता है। देखो अर्धपुद्गल परावर्तन यानी क्या, ये पूछ रहे हैं कि दो प्रकार का अनंत होता है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। अनंत दो प्रकार का है, सक्षय और अक्षय। सक्षय यानी जो क्षय हो सकता है, और अक्षय यानी जो क्षय नहीं हो सकता। अर्धपुद्गल, अर्धपुद्गल, अर्धापुद्गल यानी अर्धापुद्गल, हाफ पुद्गल, ऐसा ही अर्थ है उसका। अर्धपुद्गल का अर्थ हम बताते हैं, लिख लो। अनंत का लिख दिया, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। अक्षय अनंत का अर्थ होता है कभी खत्म नहीं होता, उसको अक्षय अनंत कहते हैं। और सक्षय अनंत ये खत्म भी हो सकता है, हाँ। अनंत के ऐसे दो भेद बनाए, एक अनंत समाप्त होने वाला भी है और एक अनंत समाप्त नहीं होने वाला भी है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। अब सक्षय अनंत जिसको हम बोल रहे हैं ना, उसको अनंत कहना औपचारिक बात ही है, वास्तव में अनंत नहीं है, वो उपचार से उसको अनंत कहा है। जैसे किसी का नाम रखा जाता है महावीर या पारस या आदिनाथ, किसी का नाम रखा जाता है, उपचार से ही रखा जाता है, वो असली पारस नहीं है। असली पारस तो अनंत रूप है, केवल ज्ञानी है वो, और ये सौक्ष्म ज्ञानी है, इनके ज्ञान का अंत है, तो भी आदिनाथ क्यों कहा, तो ये चलाने के लिए, बहुत इनमें भी योग्यता है और ये भी बन सकता है, उनके जैसे गुण प्रकट हो, माता पिता की करुणा भाव दया भाव होती, दया भाव से वो क्या करते हैं, अपने बेटे का नाम आदिनाथ रखे, क्योंकि आदिनाथ के समान ये बने, और ये बनता नहीं है सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। अनंत में दो प्रकार, सक्षय अनंत औपचारिक है अनंत कहना, क्योंकि ये इतना बड़ा वो होता काल होता है, इतना बड़ा काल होता है कि अनंत जैसा लगता है, इसके बाद अनंत स्टार्ट होता है, वास्तविक अनंत इसके बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको अर्धपुद्गल परावर्तन कहा। अर्धपुद्गल परावर्तन किसका नाम, सक्षय अनंत का नाम अर्धपुद्गल परावर्तन। लिखो इसको, सक्षय अनंत को अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। स्वर्गों की कल्पना हमने थोड़ी सी दे दी, इसको कल्पना किए बिना आगे की चाट लगने वाला नहीं है, लग ही नहीं सकता और समझ में नहीं आ सकता, इसलिए थोड़ी बहुत कल्पना आपको देनी पड़ रही है। कितने स्टेप हैं ऊपर, चार, पहले 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रवेक, फिर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर विमान, इसके उपरांत सिद्ध शिला, इसके उपरांत 3 वात वलय है, अंतिम वात वलय में कौन है, सिद्ध परमिष्टि है, और फिर अंतिम वात वलय जहां पर समाप्त हो जाता है वहां पर लोकाकाश समाप्त होता है, उसके बाद क्या है, अलोक आकाश, यानी वहां पर आकाश द्रव्य एक ही है, शून्य गगन आकाश केवल आकाश ही है, वहां पर कोई भी द्रव्य नहीं, न जीव द्रव्य है, न पुद्गल द्रव्य है, न धर्म द्रव्य है, न अधर्म द्रव्य है, न काल द्रव्य है, कोई द्रव्य नहीं। छह द्रव्य में से सभी द्रव्य लोकाकाश में ही है। और ये लोकाकाश किस प्रकार का है तो बहुत बार देखा है, जैन धर्म का जो चिन्ह है, तीन लोक का चिन्ह ऐसा है, वो भी घनाकार है, घनाकार कहाँ है, हाँ वो है, वैसा है, बहुत जल्दी देखने को मिलता है, हर जगह मिलता है। ये तीन लोक है, वो जो हाथ है ना ऐसा, वो हाथ के स्थान पर तो नरक की व्यवस्था है, और शंटर में हाथ के ऊपर मध्य लोक है, और ऊपरी भाग सुमेरु पर्वत जहां खत्म होता है वहां तक मध्य लोक है, और ऊपर तो ऊर्ध्व लोक कहलाता है। और वो लोक का आकार जो है, लोक के आकार के बाहर का सभी वो आलोक आकाश है, इधर उधर का। हम क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव किस स्वर्ग तक रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी देव रहते हैं और मिथ्या दृष्टि भी देव रहते हैं, दोनों प्रकार के रहते हैं, कहां तक रहते हैं। बारहवें स्वर्ग तक नहीं, नौ ग्रहवेग तक रहती है। हाँ, नौ ग्रहवेग तक, मिथ्या दृष्टि भी तो नौ ग्रहवेग तक रहते हैं, सम्यक दृष्टि भी रहते हैं और मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं, दोनों देव कहां तक रहते हैं, नौ ग्रहवेग तक। नौ अनुदिश के बाद, देखो नौ ग्रहवेग के बाद नौ अनुदिश आ गए, नौ अनुदिशों में नियम से सभी देव सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, ये नियम लिख लो। नौ ग्रहवेग में नौ अनुदिश में पांच अनुत्तर विमान में, इन विमानों में नियम से सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, कोई एक देव भी मिथ्या दृष्टि वहां होता नहीं है। एक विषय बहुत अच्छा था, हम बता दें, कल्पना आएगी आपको, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों देव कहां तक रहते हैं, नवे ग्रहवेग तक, और केवल सम्यक दृष्टि देव कहां कहां रहते हैं, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरों में रहते हैं। इतना समझ में आ गया। भवनत्रिक में मध्यलोक में भवनवासी व्यंतरवासी देव मध्यलोक में रहते हैं, ये सम्यक दृष्टि भी रहते हैं और मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। ज्योतिषी देव कहाँ कहाँ रहते हैं, ज्योतिषी ज्योतिर्विमान में रहते हैं, मध्यलोक में रहते हैं, पर ये भी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी। अर्थ ये हुआ, भवनत्रिक में स्वर्गों में नौ ग्रहवेग में इनमें तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों रहते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि देव मरण के पश्चात, देव मरण के पश्चात मनुष्य भी बन सकता है और त्रिरंच भी बन सकता है, दोनों प्रकार का वर्णन है, तो कितने स्वर्गों से आकर के देव त्रिरंच भी बन सकता है। बारहवें, ये ध्यान में रखना है, बारहवें स्वर्ग से आकर के त्रिरंच भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। किंतु तेरहवें स्वर्ग से ऊपर के जो देव होते हैं वो नियम से, देखो सम्यक दृष्टि भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी है कि नहीं, तेरहवां स्वर्ग है, अभी ग्रहवेग ऊपर है, तो तेरहवां, तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये चार स्वर्ग के देव और नवग्रहिक के देव, ये मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, दोनों होते हैं कि नहीं? लेकिन सम्यक दृष्टि तो मनुष्य बनता ही है, मिथ्या दृष्टि देव भी नियम से आकर के मनुष्य ही बनेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। क्या कहा? 13वें स्वर्ग से ग्रहवेग तक के देव सम्यक दृष्टि भी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं, लेकिन किस गति में आते हैं नियम से? केवल मनुष्य गति में ही आते हैं। ऐसा क्यों आप पूछ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि है और मनुष्य क्यों बन रहा है? तो ये कारण है कि वहां के देवों को कषाय बहुत मंद रहती है, मंद कषाय के कारण मनुष्यायु का बंद करते हैं, मनुष्य गति का बंद करते हैं और यहां पर मनुष्य ही बनते हैं, ये कारण है। और 12वें स्वर्ग तक के जो देव रहते हैं वो त्रिरंच भी क्यों बन रहे हैं? तो उनकी कषाय तीव्र हो सकती है जो त्रिरंच आयु के बंद के योग्य हो सकती है, इसलिए अपने परिणामों के अनुसार वे त्रिरंच आयु का भी बंद करके त्रिरंच भी बनते हैं। किंतु 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं वे सम्यक दृष्टि हो नियम से मनुष्य ही बनते हैं, ये क्यों? तो ये भी यही कारण है, सम्यक दृष्टि देवों की देवों का कषाय बहुत मंद रहता है और सम्यक दृष्टि देव कभी भी भौतिक सुख आदि में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो धार्मिकता में ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। स्वर्ग में भी ये परिस्थिति है, ऐसा मत समझो कि ये मनुष्यों में ही है, तीन लोक में सब जगह यही परिस्थिति है, सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है सब जगह है। सम्यक दृष्टि की कषाय मंद होती है, मिथ्या दृष्टि जीवों की कषाय तीव्र होती है, तीव्र मंद दोनों होती है, वहां सम्यक दृष्टि की मंद ही होती है, वहां पर तीव्र मंद दोनों होते। चर्चा तो सुनना ही है सबका, सबकी चर्चा सुनना है। ये सम्यक दर्शन का कथन केवल मनुष्यों को ही नहीं, केवल जैनों को ही नहीं, स्वर्ग के देवों में भी ये चर्चा है, नरक के नारकियों में भी ये चर्चा है, चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन सुन करके घबराओगे, हार्ट अटैक कैसे चलेगा? एक न एक दिन समझना पड़ेगा, आत्म तत्व है। हाँ, तो कई लोगों को ये लगता है कि महाराज सम्यक दर्शन की चर्चा मत करो, लोगों को बुरा लगता है। अरे बुरा लगता है तो सुनो ही मत, बुरा लगता है तो सुनने के अधिकारी है ही नहीं, वो भव्य जीव ही नहीं है। और वास्तविक बात है, इंद्रिय विषयों में ही रस आता है, किस जीव को? मिथ्या दृष्टि जीव को। वो तो स्वार्थी रहता है, उसको केवल शरीर से मतलब है, शरीर सुख से मतलब है। तो क्यों सुन रहे हो धर्म को? धर्म को मत सुनो, शरीर की सेवा करते रहो, शारीरिक सुख भोगो, उसमें कोई आनंद नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, इसलिए हमको धर्म रुचिकर लग रहा है। अपन भाग्यशाली हैं, किसी भी विषय को सुनने से घबराना नहीं, धर्म में सब बताया जाएगा, सभी कली कली खोल करके बताया जाएगा, उसको सुनने से घबराएंगे कैसे चलेगा काम? और ये तो अपना नहीं है, केवल ज्ञानियों ने बताया है, जो केवल ज्ञानियों ने बताया है अपन चर्चा कर रहे हैं, केवल आप और हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, केवल ज्ञानियों ने क्या क्या बताया है तो ये बताया है, और उसमें हमको क्या करना है? अपन स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन चर्चा करने में तो अपन मिल के बैठे। समय हो गया जिनवानी,
जब जन मन के मल को धोती अतः कहा कि जिनवानी। तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां, अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम